पूर्वोत्तर डायरी।
सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं नागालैंड के चिजामी गांव की महिलाओं की एक खास पहल के साथ। चिजामी गांव की महिलाएं पारंपरिक खाद्य सुरक्षा को संरक्षित कर रही हैं। दरअसल इन महिलाओं ने अपने संगठन के माध्यम से एक सीड बैंक बनाया है जिसमें करीब 200 फसलों के बीजों को संरक्षित किया गया है और ये पारंपरिक खाद्य फसलें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भी चिजामी गांव की महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की थी। तो आइए सुनते हैं नागालैंड में पारंपरिक ज्ञान और खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करने की इस कहानी को। और इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारी संवाददाता असोनो ने।
नागालैंड की पहाड़ियों में बसे फेक जिले के चिजामी गांव की महिलाएं अपनी समृद्ध कृषि विरासत को बचाने में लगी हैं। चिजामी कम्युनिटी सीड बैंक में, जिसे चिजामी विमेन सोसाइटी द्वारा नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क के सहयोग से चलाया जा रहा है, इसमें 200 से ज्यादा पारंपरिक बीजों को संभाल कर रखा गया है। रंग बिरंगे धान, मजबूत मिलेट्स और अलग अलग तरह के मक्के के बीज, हर बीज एक संघर्ष और परंपरा की कहानी बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल ही के मन की बात कार्यक्रम में चिजामी की महिलाओं की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि ये महिलाएं खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं और पारंपरिक ज्ञान को बचा रही हैं।
नागालैंड के चिजामी गांव से भी एक बहुत प्रेरक प्रयास सामने आया है। चिजामी गांव की महिलाएं मिलकर 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख रही है। इन बीजों को एक कम्युनिटी सीड बैंक में संरक्षित किया जा रहा है जिसे गांव की महिलाएं ही चलाती हैं। इनमें चावल, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां शामिल है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। साथियों, आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे प्रयास हमें यह बताते हैं कि समाधान हमेशा कहीं दूर नहीं होता। कई बार हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयास ही हमें सबसे मजबूत रास्ता दिखाते।
चिजामी विमेन सोसाइटी की चेयरपर्सन श्रीमती केजुनीपे उत्सुहा ने बताया कि मन की बात जैसे राष्ट्रीय मंच पर उनके गांव का जिक्र होना उनके लिए गर्व की बात है।
When I heard the Prime Minister mention our effort on a national platform like Mann Ki Baat, I feel deeply honored and encouraged. It was a proud moment for our community.
साल 2018 में शुरू हुई ये पहल अब समुदाय द्वारा संचालित मजबूत उदाहरण बन चुकी है। सीड बैंक को सही तरीके से चलाने के लिए महिलाओं की सोसाइटी के 3 सदस्यों को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बाकी सदस्य भी सहयोग करते हैं। इस समय सीड बैंक में करीब 200 प्रकार की पारंपरिक फसलें सुरक्षित रखी गई हैं, जिनमें धान, मिलेट्स, दालें और सब्जियां शामिल हैं। ये फसलें न सिर्फ मौसम के बदलाव को सहने वाली और पौष्टिक हैं, बल्कि इनका समुदाय की संस्कृति से भी गहरा संबंध है। सीड बैंक में बीजों को पारंपरिक तरीकों से सुरक्षित रखा जाता है, जैसे धूप में सुखाना, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण। एक आसान लेकिन असरदार नियम भी है, 1 कप बीज लो और फसल के बाद 2 कप वापस करो। अब महिलाओं का समूह सीड बैंक की सुविधाओं को और मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर ध्यान दे रहा है, ताकि ये पारंपरिक ज्ञान आगे बढ़ता रहे। उनके प्रयास दिखाते हैं कि बीजों को बचाना सिर्फ खेती नहीं, बल्कि अपनी पहचान, खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रही है, चिजामी की महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि खाने का भविष्य हमारे पुराने ज्ञान में ही छिपा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुनुओ की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
तो नागालैंड की महिलाओं की इस प्रेरणादायी पहल के बाद अब हम चलते हैं मिजोरम की यात्रा पर। मिजोरम में भी पिछले दिनों स्वच्छता को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सरकार, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता ने मिलकर शहरों की, गांवों की सफाई सुनिश्चित की और राज्य को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में ये विशेष प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से मिजोरम राज्य को स्वच्छ बनाने की दिशा में गैर सरकारी संगठन, सरकार और आम लोग मिलकर अपने सफल प्रयास कर रहे हैं।
मिजो लोग आम तौर पर साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक रहे हैं। माना जाता है कि मिजोरम में कभी भी मैनुअल स्कैवेजिंग यानी हाथ से सफाई की घटना नहीं हुई है। कई वर्षों से मिजो समाज अपनी साफ सुथरी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जाना जाता है। देश का सबसे साफ शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी आइजोल में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। अलग अलग इलाकों के लोग भी अपने अपने मोहल्लों में सफाई करते हैं। सरकार, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और आम जनता के मिलकर काम करने से कचरा इकट्ठा करके तय जगहों पर सही तरीके से फेंका जाता है। ये अभियान आइजोल को कचरा मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से चलाया गया। इसे कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर आइजोल सिटी क्लीनलीनेस ने आयोजित किया। इसमें राज्य के शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग, आइजोल स्मार्ट सिटी, आइजोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने मिलकर काम किया। UD&PA के सचिव लालमल सावमा पचुआउ ने वनापा हॉल के सामने एक छोटे कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ आइजोल सिटी YMA ब्रांच सफाई प्रतियोगिता भी शुरू की गई। अपने संबोधन में पचुआउ ने कहा कि साफ सफाई को प्राथमिकता देना देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने मिजो लोगों से अपने राज्य की देखभाल और सफाई की जिम्मेदारी मिलकर निभाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा, स्वच्छता एक आर्थिक संपत्ति की तरह है जो राज्य की कीमत बढ़ाती है और पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करती है। अधिकारियों के अनुसार खराब मौसम के बावजूद इस अभियान में कई विभागों और YMA की अलग अलग शाखाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने 15 ऐसे स्थानों की पहचान की जहां सबसे ज्यादा कचरा जमा होता था। इन जगहों के आसपास की YMA शाखाओं ने मिलकर सफाई अभियान चलाया और इन इलाकों को साफ किया। अधिकारियों के मुताबिक ये बड़ा अभियान आइजोल में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यापक योजना का एक अहम हिस्सा है। इसका लक्ष्य आइजोल को देश का सबसे साफ और कचरा मुक्त राजधानी बनाना है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी आइजोल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ मैं प्रशांत कुमार।
श्रोताओं, त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से त्रिपुरा में एक विशेष बहुमंजिला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तैयार हो रहा है, जो विशेष तौर पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य को लेकर केंद्रित है। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी की एक खास रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने त्रिपुरा में मजबूत होते स्वास्थ्य ढांचे के बारे में विस्तार से चर्चा की है।
त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव की एक नई लहर देखने को मिल रही है। राजधानी से लेकर दूर दराज गांवों तक ये बदलाव लोगों में नई उम्मीद जगा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ये परिवर्तन राज्य के प्रमुख रेफरल संस्थान अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और GBP अस्पताल के नेतृत्व में हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास में नए मानक स्थापित किए जा रहे हैं। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित 200 बेड वाला 7 मंजिला भवन तेजी से तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य ढांचे का लगातार निर्माण, विकास और आधुनिकीकरण त्रिपुरा को देश के उन्नत स्वास्थ्य सिस्टम के करीब ला रहा है। आत्मनिर्भर और स्वस्थ त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ना अब आसान हो रहा है। इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है 200 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस सुविधा में एक ही छत के नीचे आधुनिक सेवाएं मिलेंगी, जिससे माताओं और बच्चों को पूरी देखभाल और सुरक्षा मिल सकेगी। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबीपी अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कनक चौधरी ने ये जानकारी दी।
Agartala Government Medical College is very happy to share with you that PM Divine Scheme is going to establish a 200-bedded MCH maternal and child health wing in the campus of the AGMC and GBP Hospital. Few days back, Donor Minister Sri Jyotiraditya Sindhya and the Chief Minister of Tripura along with the Health Secretary has visited this new campus. This huge structure, 7-floor building, will take around 212 crore rupees. It will help our maternal health and child health in a very beautiful manner. We will have our administrative block, multipurpose hall, kitchen, pantry, what not. The NICU, PICU, along with that, the septic ward and state-of-art IVF clinic, IVF OPD and pay cabin will be inside this campus. So, both the ops and gynecology department along with the pediatric department will have these facilities for the state of Tripura and its people under one roof. So, we are very happy and eagerly waiting when it will have the facilities to serve our people.
ये पहल राज्य के लोगों को बेहतर मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सरकार के उस प्रयास को भी दिखाता है, जिसके तहत त्रिपुरा को एक स्वास्थ्य हब बनाने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबीपी अस्पताल में बनने वाली ये नई सुविधा जल्द ही डॉक्टरों और मरीजों दोनों की लंबे समय से चली आ रही जरूरतों को पूरा करेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ विशाल शर्मा।
श्रोताओं, अब हम आपको एक विशेष चर्चा सुनवाने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र मामलों के जानकार सुविमल भट्टाचार्य जी के साथ। दरअसल हाल ही में संसद में एक प्रश्न के लिखित जवाब में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के संबंध में उल्लेख किया, तो पूर्वोत्तर भारत में किस तरह से बीते वर्षों में ढांचागत विकास से लेकर निवेश तक कई बदलाव देखने को मिले हैं, इन पर ये खास चर्चा हमने की है, आइए सुनते हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार
सुविमल जी, बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के विकास की अगर हम चर्चा करें तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को एक रणनीतिक महत्व के तौर पर देखा है। दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके साथ जो रणनीतिक संबंध हैं उनको मजबूत करने और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस लिहाज से भी पूर्वोत्तर भारत के विकास को जरूरी समझा गया। तो कैसे इस दिशा में आप पूर्वोत्तर भारत के विकास को देखते हैं?
पिछले 12 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दिल्ली में, तब से उत्तर पूर्व भारत को मैं किस तरीका से विकास की तेजी करे उसमें प्रयास रहा। और अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा आपके सामने दर्शाता है कि किस तरीका से कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा गया है। अगर आप देखें तो टेलीकॉम कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से आज इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है सारा उत्तर पूर्व में उसमें काफी सुधार आए हैं। और इसके साथ साथ रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे और इवन इनलैंड वाटरवेज में भी काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हुए। अगर अब सिर्फ एयरपोर्ट से ले तो जब 2014 में करीब 9 एयरपोर्ट्स फंक्शनल थे, आज 17 से ज्यादा एयरपोर्ट्स फंक्शनल है। इलेक्ट्रिसिटी 100% कनेक्टिविटी हो गए, 4G कवरेज 41,000 गांवों में गए। ये जो प्रयास रहे हैं और जिस तरीका से लोगों को जोड़ा गया और जिस तरीका से लोग अपने आप बहुत सारे एक्टिविटीज इंटरनेट के माध्यम से भी कर पा रहे, और सड़क की क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट और सड़क की नेटवर्क की इम्प्रूवमेंट के माध्यम से उनके जो यातायात जो बड़ा है, मुझे लगता है उसने काफी कुछ देखा है। साथ में अगर पकड़े तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, जैसे कि धोला सदिया ब्रिज और अब गुवाहाटी में एक अंडर वाटर रेल रोड टनल की भी बात हो रही है। तो प्रयास ये रहा कि हमेशा एक उत्तर पूर्व में एक होप होता था कि हम पूरे देश के साथ साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में हम पीछे पड़े हैं, लेकिन इस 12 साल में जिस गति में ये काम हुआ है उससे बहुत कुछ फर्क पड़ा है। अगर आप रेल को भी देखें तो 2016 में जब से लमडिंग सिलचर बदरपुर की जो ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी की जो प्रयास रहे, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों राज्यों भी रेल नेटवर्क में देश के साथ जोड़ गया। आज के दिन दिल्ली, कलकत्ता और दक्षिण भारत के बहुत जगह से ट्रेनें चल रही उन राज्यों में, तो ट्रेन की जो सुविधा लोगों के बीच में चलने फिरने का और विशेषकर लोअर मिडिल क्लास के लिए जो सुविधा आए है, फ्लाइट की जिस मात्रा में फ्लाइट भरे है, अभी अभी दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने गुवाहाटी का नया टर्मिनल का उद्घाटन किया था, तो इससे जो उत्तर पूर्व का जो टूरिज्म पोटेंशियल भी रहता है उसको भी बहुत फायदा आज के डेट में हो रहा है।
हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ अगर नजर डालें तो सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एक विशिष्ट मंत्रालय की भी स्थापना की, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, जिसकी देखरेख में पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी हुई जो विकास कार्य हैं या गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाता है। तो एक मंत्रालय का स्थापित होना और जो पूंजीगत व्यय है या बजट है उसके आवंटन में भी बढ़ोतरी होना, ये कितना जरूरी था पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिहाज से?
काफी बड़ा कदम था। और आपने जैसे बताया कि उत्तर पूर्व भारत के लिए एक अलग मंत्रालय है जिसको हम डोनर कहते हैं, तो ये डोनर मंत्रालय प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय से इसको शुरू किया गया था और इसके बाद से हर सरकार उत्तर पूर्व के लिए इस मिनिस्ट्री की कामकाज के लिए इनकी निगरानी में होने के लिए हर मिनिस्ट्री की तरफ से 10% इनके अपने एक्सपेंडिचर नॉर्थ ईस्ट के लिए रखे गए। तो पिछले 10-12 साल में अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये 10% की इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ोतरी हुए और इसके साथ साथ सो कई सारे सेंट्रल स्कीम्स जो उत्तर पूर्व राज्य में चलते हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हुए, अकाउंटेबिलिटी रहे पैसा की और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग रियल टाइम बेसिस में रही, ये एक बड़ा महत्व था और ये मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा काम निभाया। इसकी जो एजेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC, इसने भी अपना जो स्कीम्स रहे हैं जैसे कि सड़क का कंस्ट्रक्शन और जो स्ट्रेटेजिक एरिया जहां बहुत जगह इनकी तरफ से रोड्स बनाए जाते हैं या और सारे जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से या इंडस्ट्री 4.0 को किस तरीके से उत्तर पूर्व में लिया जाए, तो ये जो एफोर्ट रहे हैं ये मिनिस्ट्री के माध्यम से और साथ साथ उत्तर पूर्व के लिए कई सारे स्कीम्स चलते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एफोर्ट है उसके और बूस्ट अप रहे।
सरकार ने पूर्वोत्तर भारत को अष्ट लक्ष्मी की संज्ञा दी है और ये प्रयास रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक अवसर को और बढ़ोतरी मिले और साथ ही निवेश इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ोतरी मिले। तो इस दिशा में भी आप कुछ प्रगति होती हुई देख रहे हैं कि निवेश और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के जो प्रयास हैं वो किस तरह से हुए हैं?
इसमें बहुत सुधार आए हैं और अगर हम जो सबसे सामने हमारे सामने दर्शाता है ये है कि आज जो एक उत्तर भारत के एक परसेप्शन कई सालों से चले कि ये बड़ा डिस्टर्ब्ड है और इसमें काम नहीं होते हैं और बिजनेस वाणिज्य के लिए ठीक नहीं है, ये बदलते जा रहा है। और जिस तरीके से निवेश अभी आ रहा है जैसे कि आसाम में इन्वेस्टमेंट समिट जो कि उसमें देखा गया है कि करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर भी लोगों ने वादा किया इन्वेस्ट करने का और इसके बाद जो फॉलो थ्रू भी रहे हैं। इसके साथ साथ जब आसाम में होते तो साथ में जो और उत्तर पूर्व राज्य उनमें भी लोगों में बिजनेस इंटरेस्ट होता है तो एंसिलरी इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज भी साथ साथ में होते हैं। और जो आज प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से एक कॉमन इकोनॉमी नॉर्थ ईस्ट से जुड़े और वो किस तरीके से वो भी डायरेक्ट एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी रहे और अपने डोमेस्टिक मार्केट जो सारे देश भर में उत्तर पूर्व के प्रोडक्ट्स की बहुत कुछ की डिमांड होते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको कैसा पहुंचा जाए कि इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से। अगर आप देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2015 से लागू किया गया है तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से वाणिज्य जिसके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ाया दे सकता है, उसके लिए भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मैं कहूंगा एक वार्म अप एक्सरसाइज हो चुका है। और धीरे धीरे जैसे बांग्लादेश का हालत भी सुधरते जा रहे हैं और म्यांमार में भी मुझे लगता है बड़े जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल थे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की आगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी, उसमें भी हमें बहुत सुधार देखे हैं। तो एक की है नीति और पॉलिसी और उत्तर पूर्व को क्लोज अटेंशन देने का, इन्वेस्टमेंट देने का, फंडिंग देने का और फंडिंग को मॉनिटर करना, ये जो एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच रहे है इससे लोगों का बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ा। साथ साथ अगर आप देखें तो गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे जो उग्रवादी मूवमेंट्स वहां होते हैं एक एक करके करीब 12 ऐसा मूवमेंट्स को अमित शाह जी ने प्रयास करके निगोशिएटिंग टेबल में लाके उसमें एग्रीमेंट करके वो सारे चीज बंद कराए। और ये जो रिहैबिलिटेशन इनकी वो है जो इनको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सपोर्ट दिया जाता है, तो पहले ऐसा बहुत सारे सरेंडर सेरेमनी हो जाते इसके बाद आगे नहीं होते थे, अब इसमें भी धन एलोकेशन के बाद किस तरीके से इनके पास पहुंचे मॉनिटर करके, और इससे भी बहुत फर्क पड़ा है कि बहुत सारे लोग जो आपके गलत रास्ता में चले गए थे आज वो आके खुद एंटरप्रेनर बन रहे हैं।
विकास, समृद्धि और शांति, इन तीनों मामलों में देखा जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र एक नई तरह से आगे बढ़ता हुआ अब दिख रहा है और विकास की इस तेज गति से निश्चित रूप से जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को लाभ पहुंच रहा है, इसके साथ साथ इसका लाभ हम पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। सुमिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक तानेबानी की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है वहाँ की जनजातियाँ। पूर्वोत्तर भारत में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं और यही इस क्षेत्र को विशेष भी बनाती हैं। नागालैंड भी विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें से एक जनजाति है अंगामी जनजाति। तो आज अपने श्रोताओं को हम इस जनजाति की परंपराओं के बारे में, धरोहर के बारे में और साथ ही इनके रहन सहन, खान पान और तमाम जीवन शैली के बारे में आपको इस विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं। हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
नागालैंड में कुल 18 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इन जनजातियों में अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी उंगन, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, संगतम, तिखिर, यिमख्यूंग, जेलियांग, कचारी, कुकी और गारो शामिल हैं। इन जनजातियों की विविधता उनकी भाषा, परंपराओं, सामाजिक जीवन और पारंपरिक पहनावे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक आभूषण और मनके से बने गहने उनकी सांस्कृतिक पहचान को और भी जीवंत बनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति अंगामी नागा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। अंगामी जनजाति अपनी सशक्त सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, अंगामी लोगों की पारंपरिक भूमि मानी जाती है और आज भी उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अंगामी जनजाति मुख्य रूप से कोहिमा जिले में बसी हुई है। इस क्षेत्र को चार भागों में देखा जाता है। नॉर्थ अंगामी कोहिमा के उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं, साउथ अंगामी माउंट जापफू की तलहटी के इलाकों में बसे हैं, वेस्टर्न अंगामी कोहिमा के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि चाखरो अंगामी दीमापुर और चुमुकेदिमा जिले के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अंगामी समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये लोग सीढ़ी नुमा खेतों में धान और अन्य अनाज की खेती करते हैं। समय के साथ आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से भी अंगामी समाज जुड़ा है, लेकिन कृषि आज भी उनकी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। अंगामी जनजाति में ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव देखा जाता है और धार्मिक आस्था उनके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंगामी समुदाय का प्रमुख पर्व सेक्रेनी है, जो हर वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। ये पर्व नए चंद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और लगभग 10 दिनों तक चलता है। सेक्रेनी पर्व के दौरान शुद्धिकरण से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान, सामूहिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से समुदाय के लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अंगामी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में और जानकारी साझा कर रहे हैं अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रजाओ वोतुओ चात्सु।
The Angami tribe is a major tribe in Nagaland, predominantly settled in the district of Kohima, Chimongedima and Dimapur. There are over 100 Angami Naga villages spread across four ranges, namely northern, southern, western and Chakoma. As a tribe, the Angamis falls under Tengime family. Tengide is the mother tongue of the Angamis. The Angami are one of the first tribes in Nagaland to embrace Christianity, propagated by the American missionaries in the late 18th century. Sekreni, celebrated in the month of February, is the premier festival of the Angamis. And Angamis, also known as Kusani. Mostly Angamis practice terrace cultivation and also jhum cultivation.
अंगामी पुरुषों और महिलाओं के पारंपरिक वस्त्रों की बनावट एक दूसरे से अलग होती है। पुरुष आमतौर पर सफेद रंग की मुहशू और काले रंग की लोहे शॉल पहनते हैं, वहीं महिलाएं मेचला नाम की पारंपरिक लपेटने वाली स्कर्ट और खास डिजाइन और पैटर्न वाली शॉल पहनती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही पारंपरिक आभूषण पहनना पसंद करते हैं। मन के छोटे मुखौटे वाले लॉकेट, चूड़ियां और कंगन अंगामी आभूषणों की खास पहचान है। अंगामी जनजाति अपनी लकड़ी की कारीगरी और पारंपरिक कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नृत्य और गीत अंगामी सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। धार्मिक आयोजनों से लेकर सामाजिक समारोहों तक गांव के लोग एक साथ एकत्र होकर पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि समुदाय की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को भी मजबूत करती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ मैं विशाल शर्मा।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धोरी आही से प्रकाशी समन्नयार्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धोरी आई से प्रकाशी समन्नयर अर्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र।
श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
কান্ন কুবজরে পরা বার ভূঁয়া আহিছিলে কেই বংশতে শঙ্কর দেউ ইয়াতে জনমিলে।
हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।
मोरूर देखरे आजान फकीरे मधुर जिकिर रसिले दिल्लीर दिलवारे आही हस्ती पुठी आकिले पंच नदीर तेग बहादुरे धरमर केतु गढ़िले সমন্বয়ার দেখুয়ালে কত প্রকাশ স্ফূর্ত। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।
আলেখ ও সংকলন কমল কুমার প্রজাপতি। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
पूर्वोत्तर गाइड।